ॐ नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता थारूप अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग श्लोक संख्या 2 मेरे पीछे बोलिए। अधः च ऊर्ध्वं प्रसृता तत्र शाखाः गुण प्रवृद्धाः विषया प्रबालाः अधः च मूलानि अनुसंततानि कर्म अनुबंधीनि मनुष्यलोके अधस्तोर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखां क्या बात है? नहीं बोल सकते? मैं तो बहुत अच्छी तरह से बोल रहा हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे बोल रहा हूँ। अधस्तोर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखां गुण प्रवृद्धा विषय प्रबालां अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके अधश्चोर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखां गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके अधश्चोर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखां गुण प्रवेदा विषय प्रबाला अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके अधः नीचे च तथा ऊर्ध्वं ऊपर की ओर प्रसृताः फैली हुई तस्य उसकी शाखाः शाखाएं गुण प्रकृति के गुणों द्वारा प्रवृद्धाः विकसित विषय इंद्रिय विषय प्रबाला कहनिया अधः नीचे की ओर च तथा मूलानि जड़ों को अनुसंततानि विस्तृत कर्म कर्म करने के लिए अनुबंधेनि बंधा मनुष्यलोके मानव समाज के जगत में इस वृक्ष की शाखाएं बोलिए इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के तीन गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी कहानियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज से सकाम कर्मों से बंधी हुई है। कृपा करके आप लोग ध्यान से सुनिए, कुछ लोग फिर से समझेंगे। इस लोग निकालिए, भगवान कह रहे हैं अधस्तोर्ध्वम प्रकृता सत्य शाखा, उसकी शाखाएं ऊपर और नीचे फैली हुई हैं। किसकी शाखाएं? संसार रूपी वट वृक्ष की। इसके पहले श्लोक में, यानी जो इस अध्याय का पहला श्लोक, उसमें भगवान ने बताया है ऊर्ध्व मूलम अधा शाखम, कि ऊपर जड़ है और नीचे तना है ना। अब शाखाएं, ठीक है ना। तो पहले भगवान ने जड़ का वर्णन किया, इस वृक्ष की जड़ का वर्णन किया कि जड़ सबसे ऊपर है और फिर उसका तना नीचे है। अब शाखाएं कैसी हैं? ऊपर और नीचे फैली हैं, है ना। अब इसको समझिए, है ना। अब इसको समझिए, सबसे ऊपर तो जड़ है और तना नीचे की ओर आ रहा है। अब शाखाएं जो हैं कुछ ऊपर की तरफ जा रही हैं, कुछ नीचे की तरफ जा रही हैं, सब तरह से शाखाएं है कि नहीं। क्योंकि अगर वो पेड़ उल्टा है तो शाखाएं जाएंगी, कुछ ऊपर की तरफ जाएंगी, कुछ नीचे की तरफ जाएंगी, है कि नहीं। लेकिन जड़ सबसे ऊपर है, वहां तक नहीं जा सकती कोई भी शाखा, जड़ तक नहीं जा सकती है। लेकिन जड़ के नीचे ही है शाखाएं, लेकिन वो शाखाएं ऊपर नीचे फैली हुई हैं, फैली हैं। अधश्चोर्धम प्रसिता सस्य शाखा गुण प्रवृद्धा, और गुण से ये बढ़ रही हैं। गुण मतलब तीन गुण, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। सत्वगुण से जो शाखाएं जो बढ़ रही हैं वो ऊपर की तरफ जा रही हैं, सत्वगुण से ऊपर की तरफ शाखाएं जा रही हैं, रजोगुण से कहां हैं? बराबर हैं, आगे पीछे दाएं बाएं। और तमोगुण की शाखाएं कहां जा रही हैं? नीचे की तरफ जा रही हैं, है ना। तो ये समझो, गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला, और प्रवाल, प्रवाल का मतलब कोपले, उसकी कोपले की विषय है। कोपल जो है ना, जो नए नए उसमें निकलते हैं ना शाखाओं में, क्या बोलते हैं आप लोग? कोपल ही तो बोलते हैं, है ना। तो वो जो कोपल है ये विषय है। विषय मतलब सब स्पर्श रूप रस गंध जो इंद्रियों को आकर्षक लगते हैं, है ना। तो इस संसार वृक्ष की जो कोपले हैं वही इसकी विषय हैं। फिर विषय प्रवाला अधस्त मूलान अनुसंततानी, अब अनुसंततानी माने लटक रही हैं, नीचे जड़ें लटक रही हैं। अब इसका क्या मतलब है? वो तो ऊपर जड़ है। अभी भगवान कह रहे हैं कि अधस्त मूलानी, बहुत से जड़ें नीचे की ओर लटक रही हैं। इसका क्या मतलब? बट वृक्ष है, बरगद का पेड़, उसकी जो जड़ होती है एक जिससे तना निकलता है, और फिर बहुत सी जड़ें और भी लटकती हैं, है ना। तो ये जड़ें जो हैं नीचे की तरफ जा रही हैं। उल्टा वृक्ष है, अब आप सोचिए बरगद का वृक्ष उल्टा है ना। तो जो शाखाओं से भी जड़ें जो निकलती हैं वो नीचे की तरफ जाती हैं। अब यहाँ जो मुख्य जड़ है वो तो ऊपर है, लेकिन जो और दूसरी जड़ें जो निकल रही हैं शाखाओं से वो ऊपर की तरफ नहीं जा रही। आप समझ रहे हैं? जो दूसरी जड़ें निकल रही हैं वो ऊपर की तरफ नहीं जा रही हैं। किस तरफ जा रही हैं? नीचे की तरफ जा रही हैं। क्यों नीचे की तरफ? क्योंकि उल्टा है पेड़, उल्टा है पेड़, है ना। इसलिए कुछ जो है ना चीजें इस वृक्ष की जो है वैसी नहीं है जैसे कि वृक्ष में होती है, है? इस भौतिक संसार में पेड़ सीधा होता है, जड़ नीचे होती है और तना ऊपर होता है और फिर शाखाएं ऊपर होती हैं, है ना। तो जो जड़े हैं, जो शाखाओं से जड़ें गिरती हैं वो नीचे की ओर गिरती हैं, जमीन में गिरती हैं। यानी यहां पर जो जड़े हैं वो निकल रही शाखाओं से वो और नीचे की तरफ जा रही है। जो मुख्य जड़ है वो सबसे ऊपर है और जो दूसरी जड़ें निकलना ही है वो नीचे की तरफ जा रही है। अदस्य मूलान अनुसंतानी कर्मानुबंधहीन मनुष्य लोके, ये मनुष्य लोक में ये कर्म से बांधने वाली है, ये कर्म बंधन है, मनुष्य लोक का ये कर्म बंधन है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। शिला प्रभुपाद की अस्वच्छ वृक्ष की यहाँ और भी व्याख्या की गई है। अब अस्वच्छ का मतलब ये बरगद ही समझ लो, क्योंकि बरगद के पेड़ में ही और जड़ें होती हैं, इस तरह की जड़ें। बरगद का पेड़ ही जो है ना बड़ा मजबूत होता है, क्योंकि उसकी जो है एक मुख्य जड़ तो होती है केंद्र में, और बहुत सी जड़ें और जमीन के नीचे जाती हैं, तो उसका जो है फिर बहुत उसकी मजबूती हो जाती है। आप समझ रहे हैं, कोई भी पेड़ में ऐसा नहीं होता है जैसा बरगद के पेड़ में होता है। बरगद की शाखाएं जितनी फैलती हैं उतनी अधिक जड़ें और वो अपनी गिरा देता है, और जमीन के अंदर वो जड़ें घुस जाती हैं और बड़ा जो है वो मजबूत हो जाता है बरगद का पेड़, लेकिन नहीं बोले संसार में बरगद का पेड़ ही जो है मतलब ऐसा होता है कि जो बहुत फैला होता है और बहुत लंबी आयु होती है बरगद का पेड़ में, है ना। शायद बरगद का पेड़ ही है कहीं पर जिसके बीच से सड़क निकाली गई है ना, कहाँ पर है वो, कलकत्ता में है ना, तो बरगद के पेड़ में। तो ये जो बरगद का पेड़ है तो ये जो भगवान तुलना दे रहे हैं ये बहुत ही उपयुक्त है, इससे ज्यादा उपयुक्त तुलना हो नहीं सकती संसार की। वैसे तो तुलना अक्सर संसार की किससे की जाती है, जंगल से। हम लोग रोज मंगल आरती में जो गाते हैं सबसे पहला शब्द क्या है, संसार दामनल। तो संसार ये जंगल है, इसमें दामनल आग लगी हुई है ना। तो जब संसार की जंगल से तुलना की जाती है तो एक आंशिक रूप से ये जो है वर्णन होता है संसार का। क्यों, क्योंकि जंगल एक ही फ्लोर में होता है, जंगल का फ्लोर एक ही तो होता है जमीन, आप समझे ना। लेकिन वृक्ष में जो है कई फ्लोर होते हैं, वृक्ष में कई फ्लोर होते हैं है ना, उसकी शाखाएं नीचे की होती हैं, ऊपर की ओर होती हैं, और इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी कहां कहां तक फैली होती हैं, आप समझे ना। तो वृक्ष की शाखाओं के जो है कई फ्लोर होते हैं, तो ये जो संसार रूपी जो जंगल है इसके भी कई फ्लोर हैं, इसलिए भगवान इसको वृक्ष बतला रहे हैं। अब देखो कितना सही है, भगवद गीता में जो भगवान वृक्ष से तुलना दे रहे हैं, जंगल भी है ये और कई फ्लोर वाला जंगल है ये, आप समझे। वृक्ष तो वृक्ष है तो जंगल भी है कि नहीं। इतना बड़ा वृक्ष है कि इसमें जंगल है और नीचे के फ्लोर ऊपर के फ्लोर है ना। आप जानते हैं कितने फ्लोर हैं इस ब्रह्मांड में, 14 फ्लोर हैं, आप समझे। हाँ तो ये वृक्ष जो है आप समझो कि कितना मतलब भगवद गीता में पूर्ण वर्णन संसार को जो भगवान ने वृक्ष बताया है, तो ये जंगल भी हो गया और कई फ्लोर वाला जंगल हो गया ये, है ना। तो अब प्रभुपाद लिखते हैं इसकी शाखाएं चतुर्दिक फैली हुई हैं, चतुर्दिक का मतलब चार दिशाएं, इन यहां पर चार दिशाएं मत समझिए, दसों दिशाएं समझिए, दस दिशाएं, ऊपर की भी दिशाएं और नीचे की भी दिशाएं, और फिर आठ दिशाएं अपने बराबर है ना, चार दिशाएं और चार कोण, इस प्रकार से दसों दिशाएं हैं इसकी शाखाएं। तो प्रभुपाद लिखते हैं निचले भाग में जीवों की विभिन्न योनियां हैं, ठीक है ना, निम्न लोक विभिन्न योनियां, जैसे मनुष्य पशु घोड़े गाय कुत्ते बिल्लियां आदि, ठीक है। जंगल की जो निचला फ्लोर है, जंगल में जो निचला फ्लोर है उसमें निम्न योनियां हैं। हाँ, ये सभी वृक्ष की शाखाओं के निचले भाग में स्थित हैं, लेकिन ऊपरी भाग में जीवों की उच्च योनियां हैं, यथा देव, गंधर्व तथा अन्य बहुत सी उच्चतर योनियां। जानते और कौन है? देवता हैं, गंधर्व हैं, और क्या है? किन्नर, अप्सराएं, और किम पुरुष है ना, विद्याधर, इस प्रकार के बहुत सी हैं। आगे प्रोपर लिखते हैं, जिस प्रकार सामान्य वृक्ष का पोषण जल से होता है, उसी प्रकार ये वृक्ष प्रकृति के तीन गुणों द्वारा पोषित है। बड़ा पूर्ण वर्णन है, बहुत पूर्ण वर्णन है। भगवान कह रहे हैं कि कोई सामान्य वृक्ष होता है, उसका पोषण एक ही जल से होता है, और जल में आपने पानी डाला तो वो जो जल है वो पूरे पेड़ में जाता है, लेकिन इसमें तीन प्रकार का जल होता है। सत्वगुण का जो जल है तो वो पोषण करता है ऊपर की शाखाओं को। सत्वगुण का जो जल है वो जड़ से आता है, कहाँ? ऊपर की शाखाओं में जाता है, वो शाखाएं बढ़ती हैं, है ना। रजोगुण का जो जल है उससे बढ़ती हैं कौन सी शाखाएं? मध्य की शाखाएं बढ़ती हैं, फैलती हैं, ज्यादा फैलती हैं, विस्तार। और तमोगुण का जल है वो नीचे की तरफ जाता है। तीन प्रकार का जल है ना। तो संसार में ऐसा कोई वृक्ष नहीं देखा जाता है कि अलग अलग प्रकार का जल है वो अलग अलग शाखाओं में जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन देखो, समझाने के लिए भगवान जो ना ये बता रहे हैं, तीन गुणों द्वारा हो सकता है। प्रोपर लिखते हैं, कभी कभी हम देखते हैं कि जल के अभाव से कोई कोई भूखंड वीरान हो जाता है, तो कोई खंड लहलहाता है। हाँ, ठीक है ना। पानी जहाँ नहीं है तो वो भूमि बंजर हो जाती है, और जहाँ पानी है वहां पर खूब हरियाली है, जंगल है। हाँ, इसी प्रकार जहाँ प्रकृति के किन्हीं विशेष गुणों का आनुपातिक अधिक होता है, वहाँ उसी के अनुरूप जीवों की योनियां प्रकट होती हैं। तो जहाँ पर तमोगुण का अनुपात ज्यादा है, तो वहाँ पर वो तमोगुणी ज्यादा जीव होते हैं। जहाँ रजोगुण का अनुपात ज्यादा होता है, तो रजोगुणी जीव ज्यादा होते हैं। सत्वगुण का अनुपात ज्यादा है, तो सत्वगुणी जीव ज्यादा होते हैं। यह समय के अनुसार भी जो ना ये जो गुणों की मात्रा बढ़ती है या घटती है, जैसे कि सतयुग में सत्वगुण ज्यादा बढ़ता है तो ब्राह्मणों की प्रधानता होती है, त्रेतायुग में रजोगुण बढ़ता है ज्यादा तो क्षत्रियों की प्रधानता होती है, द्वापर में रजोगुण तमोगुण ज्यादा बढ़ता है तो वैश्यों की प्रधानता होती है, और कलयुग में तमोगुण ज्यादा बढ़ता है तो शूद्रों की प्रधानता होती है। तो गुणों से ये जो ना क्या है कि फैलता है ये संसार रूपी वृक्ष। आगे प्रोपर लिखते हैं, वृक्ष की टहनिया इंद्रिय विषय हैं। हाँ, टहनिया या भगवान ने कहा प्रवाल, कोपल। यहाँ पर नई नई जो कोपल हैं वही टहनिया, क्या बोले, टहनिया बोलेंगे ना, आगे चल करके वही तो शाखाएं बनती हैं, लेकिन शुरू में वो कोपल होती है कि नहीं? कोपल, टहनिया। विभिन्न गुणों के विकास से हम विभिन्न प्रकार की इंद्रियों का विकास करते हैं, और इन इंद्रियों के द्वारा हम विभिन्न इंद्रिय विषयों का भोग करते हैं। विभिन्न गुणों के विकास से, तमोगुण के विकास से ऐसी इंद्रियां विकसित होती हैं जो कि तमोगुणी विषय को ग्रहण करती हैं। जैसे कि सुअर है ना, तो वो जो है ना मल का जो है स्वाद ले सकता है ना। ऊंट है तो वो कांटों का स्वाद ले सकता है ना। तो यह विभिन्न गुणों के द्वारा विभिन्न प्रकार की इंद्रियों का विकास होता है, और विभिन्न इंद्रिय विषयों का भोग करते हैं। फिर आगे प्रोपर लिखते हैं, शाखाओं के सिरे इंद्रियां हैं, जैसा कान, नाक, आंख आदि, जो विभिन्न इंद्रिय विषयों के भोग में आ सकते हैं। टहनिया, टहनिया क्या है? शब्द, रूप, स्पर्श आदि इंद्रिय विषय हैं। सहायक जड़ें राग तथा द्वेष हैं, जो विभिन्न प्रकार के कष्ट तथा इंद्रिय भोग के विभिन्न रूप हैं। हाँ, सहायक जन है वही, जिसको कि जो भी बोले, जो वट वृक्ष में जो जड़ें होती हैं तो वो सहायक जड़ें कहलाती हैं, मुख्य जड़ और दूसरी सहायक जड़, है ना। तो सहायक जड़ जो कर्म से बांधने वाली है, और यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं राग द्वेष, राग द्वेष से बांधने वाली हैं ये सहायक जड़ है। हाँ, आगे धर्म अधर्म की प्रवृत्तियां इन्हीं गौण जड़ों से उत्पन्न हुई मानी जाती है। हाँ, मनुष्य लोग मनुष्य में ही धर्म और अधर्म दोनों मिला हुआ होता है। धर्म और अधर्म का जो बंधन मनुष्य लोक में होता है वही कर्म बंधन है, ठीक है ना। जो पशु पक्षी हैं तो वे पाप का फल भोगते हैं, कोई नया कर्म नहीं होता, और जो उच्च लोक के निवासी हैं वो पुण्यों का फल भोगते हैं, उनसे कोई नया कर्म नहीं होता। लेकिन ये मनुष्य लोक में जो ना कर्म से बांधने वाली जो जड़ें हैं ये राग द्वेष की हैं, धर्म धर्म की हैं, कर्म बंधन जो पैदा करती हैं। आगे प्रोपर लिखते हैं जो चारों दिशाओं में फैली हैं। हाँ, ये जो गौड़ जड़ें हैं ये चारों दिशाओं में फैली हैं। वास्तविक जड़ तो ब्रह्म लोक में है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। वास्तविक जड़ ब्रह्म लोक में है, मतलब ब्रह्मा जी है। तो ब्रह्मा जी ही जो है ये सृष्टि पैदा करते हैं, और ब्रह्मा जी के बाद ही फिर और ये तना जो है ना निकलता है इस वृक्ष का, और फिर उससे कई शाखाएं निकलती हैं, है ना। तो कितना सही है वर्णन संसार रूपी वृक्ष का। किंतु अन्य जड़े मर्त्य लोक में है, मर्त्य लोक मतलब मनुष्य लोक, ठीक है ना। तो मुख्य जड़ ब्रह्मा जी हैं, और जो अन्य जड़े हैं सहायक जड़ गौड़ जल या अन्य जड़े मर्त लोक में। जब मनुष्य उच्च लोकों में पुण्य कर्मों का फल भोग चुकता है तो वह इस धरा पर उतरता है, और उन्नति के लिए सकाम कर्मों का नवीनीकरण करता है। यह मनुष्य लोक कर्म क्षेत्र माना जाता है, तो कर्म क्षेत्र है। अब श्रीमद् भागवत में जो संसारूपी जंगल का वर्णन है, इसको हम आज पढ़ के सुनाएंगे कि कितना सजीव वर्णन है कि संसार जो है वास्तव में एक जंगल है। इसमें कैसी मतलब जो है हर चीज जो है कैसी है, जंगल के समान है, तुलना दी गई, जिसको हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। आप इसको ध्यान से सुनिए। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, ये भागवत का पांचवा स्कंध है, अध्याय 14 है। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि ये जीव जो है इस संसार रूपी जंगल में क्यों आता है। ये जो जीव है ये संसार रूपी जंगल में क्यों आता है, उसका घर तो भगवान के धाम में है, तो अपने घर से जंगल में क्यों आता है। जैसे एक व्यापारी अपना घर छोड़ करके जंगल में जाता है, सोचिए। जैसे एक व्यापारी की रुचि सदैव धन उपार्जन के प्रति रहती है, तो कभी कभी मिट्टी लकड़ी जैसी सस्ती वस्तुएं प्राप्त करने के लिए और नगर में ले जाकर अच्छे मूल्य में बेचने की इच्छा से वो वन में प्रवेश करता है। सोचो, कभी कभी कोई व्यापारी अपने घर से जंगल में जाता है। ये जीव व्यापारी है, उसका धाम है, उसका अपना घर भगवान का धाम है ना। ये संसार के जंगल में क्यों आता है, कुछ है सस्ती चीजें बटोरने के लिए, कि शहर में वो बेचेगा और ज्यादा पैसा मिलेगा। इसी प्रकार बद जीव लोभवश कुछ भौतिक सुख पाने की इच्छा से इस भौतिक जगत में प्रवेश करता है, और धीरे धीरे वो बन के सघन भाग में पहुंच जाता है। अब उसको पता नहीं चलता कि अब वो कहां से आया है, अब कहां जाएगा, अब उसका रास्ता एकदम खत्म। आप समझे, आप किसी जंगल में आप घुस जाओ, अब आपको दिशाएं भी पता नहीं चलेंगी, कौन सी दिशा है, किस दिशा में जाना है, किस दिशा से आप आए हो, कुछ पता नहीं चलेगा। घोर जंगल में अगर आप फंस गए तो कुछ पता नहीं चलेगा, है ना। तो ये हाल है। तो सब वो अब नहीं जानता कि बाहर कैसे निकले, इस भौतिक जगत में प्रवेश करके शुद्ध जीव सांसारिकता में बन जाता है। इस प्रकार जीवात्मा माया के वशीभूत हो जाता है। अपने कारण वो भगवान की सेवा में सदैव तत्पर रहने वाले भक्तों का संग प्राप्त नहीं कर पाता। एक बार वह माया के वशीभूत होकर एक के पश्चात एक अनेक प्रकार के शरीर धारण करता है और भौतिक गुणों यानी सत्पुरुष और तम के द्वारा प्रेरित होकर कर्म में प्रवृत्त होता है। इस प्रकार बद्ध जीव कभी स्वर्गलोक तो कभी भूलोक तो कभी पाताल लोक में प्रवेश करता है, है ना। तो अब आप सोच लो कि ये संसार के वृक्ष में स्वर्गलोक मतलब ऊपर की शाखाओं में जाता है, है? और कभी भूलोक बीच की शाखा में आता है और कभी पाताल लोक या निम्न योनि में प्रवेश करता है, नीचे की शाखाओं में जाता है। इस प्रकार अनेक देहों के कारण वह निरंतर कष्ट सहन करता है। ये कष्ट और पीड़ाएं कभी कभी मिश्रित रहती हैं, कभी ये असह्य होती हैं, सहन नहीं कर पाता इतना कष्ट मिलता है। हाँ, ये सारी दशाएं बद्ध जीव को मनोकल्पना के कारण प्राप्त होती हैं। वो अपने मन और पांच इंद्रियों का उपयोग ज्ञान प्राप्ति के लिए करता है और इन्हीं से विभिन्न देह और विभिन्न दशाएं प्राप्त करता है। बहिरंग शक्ति माया के नियंत्रण में आकर जीव को इन इंद्रियों का उपभोग करके दुख उठाना पड़ता है। वह वास्तव में छुटकारा पाने की खोज में रहता है किंतु सामान्यतः वह भटकता है। यद्यपि कभी कभी कठिनाई के पश्चात उसे छुटकारा मिल जाता है, इस प्रकार संघर्षशील रहने के कारण उसे भगवान विष्णु के चरण कमलों में भ्रमरों के समान अनुरक्त भक्तों की शरण नहीं मिल पाती है। इसके बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इसमें डाकू मिलते हैं, उसको जंगल में डाकू है, ठीक है ना। अब डाकू क्या है, इस संसार भी वन में अनियंत्रित इंद्रियां डाकुओं के समान है। डाकू क्या करते हैं, आपके पास जो माल है वो छीन लेंगे, तो आपके पास जो ज्ञान की जो संपत्ति है वो इंद्रियां छीन लेती हैं, ये डाकू है आपके। बद्ध जीव श्री कृष्ण भावनामृत के विकास के लिए कुछ धन अर्जित कर सकता है, मतलब कृष्ण भावनामृत ही उसका धन संपत्ति है जो उसने कुछ एकत्रित की है, और ये डाकू क्या करते हैं, ले जाते छीन लेते हैं। किंतु दुर्भाग्यवश अनियंत्रित इंद्रियां इस धन को लूट लेती हैं। इंद्रियां डाकू हैं क्योंकि वे जीव को इंद्रिय विषयों की जो है कामना में अपना धन व्यय करने के लिए बाध्य करती हैं। इंद्रिय विषय क्या है, दर्शन यानी देखना है, घ्राण सूंघना है, आस्वाद करना है, स्पर्श करना है, श्रवण करना है ना, ये जो है इनकी। तो बद्ध जीव अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए बाध्य हो जाता है तो अपना धन क्या होता है, गंवा देता है, जिससे उसका सारा धन व्यय हो जाता है। धन मतलब ज्ञान या कृष्ण भक्ति का कृष्ण भावनामृत। यदि ये धन वास्तव में धार्मिक कृतियों के संपादन के लिए अर्जित हुआ रहता है किंतु डाकू इंद्रियां इसका हरण कर लेती हैं, है ना। तो ये समस्या है। तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण भावनामृत की उन्नति के लिए है वास्तव में। ये ध्यान रखना चाहिए, इस भौतिक जगत में जो धन और अवसर प्राप्त हुआ है उसको इंद्रिय तृप्ति में व्यर्थ न किया जाए, कृष्ण भावनामृत की उन्नति के लिए है। इसलिए व्यक्ति को मन और पांच इंद्रियों पर संयम करना चाहिए, तपस्या करे मनुष्य को चाहिए कि वह थोड़ी तपस्या करे और भक्ति के निमित्त जीवन के अलावा अन्य किसी बात पर धन को खर्चा ना करे, है ना। तो ये प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं। अच्छा फिर और देखिए, इस जंगल में और क्या क्या है। भौतिक जगत में स्त्री पुत्र के नाम से पुकारे जाने वाले कुटुंबी लोग वास्तव में भेड़िए और सियार हैं। अगर ये भौतिक जीवन, मतलब अगर संसार में अगर इंद्रिय तृप्ति है, अगर आपके जीवन का लक्ष्य है, तो आप समझ लो कि स्त्री और पुत्र ये सब क्या है, भेड़िए और सियार है। तो ये जो भेड़िए सियार क्या करते हैं, जैसे चरवाहा अपने भेड़ों की रक्षा के लिए यथाशक्ति प्रयास करता है, और भेड़ी और सियार जो है ना बलपुरों को उठा ले जाते हैं, है ना। इसी प्रकार यद्यपि कंजूस अपने धन की चौकसी रखना चाहता है, किंतु उसके पास उसके परिवार के प्राणी उसकी धन संपत्ति को उसके देखते देखते भी बलपूर्वक छीन लेते हैं। तो ये जो है तो वही तात्पर्य लिखते हैं कि पत्नी जो है दिन में डाकिनी है और रात्रि में बाघिनी। उसका एकमात्र कार्य होता है दिन रात अपने पति के खून को चूसना। दिन भर पति द्वारा खून पसीना एक करके अर्जित धन गृहस्थी के खर्चों में चला जाता है। वो जेब से निकाल लेती है पैसा। तो दिन की डाकनी और रात की बाघनी। रात्रि में यौन सुख के कारण पति वीर रूप में अपना रक्तपात करता है। इस प्रकार वह पत्नी द्वारा दिन रात चूसा जाता है। इसी प्रकार बच्चे भी भेड़िए श्रृगाल लोमड़ी के समान है। वो क्या करते हैं, मांस के टुकड़े जो ना वो लूटते हैं और जो है ना खसोड़ते हैं बच्चे, तो वो जो है ना इस तरह के हैं। तो ये लूटे रहे हैं पत्नी और संतान जो है जो कहलाते हैं वो उसके धन के लूटने वाले हैं। फिर इस जंगल में और क्या है, जैसे किसान प्रतिवर्ष अपने अनाज के खेत को जुटकर सारा घास फूस निकालता रहता है, तो भी उनके बीज उसमें पड़े रहते हैं। तो झाड़ खंखाड़, झाड़ खंखाड़ बोलते हैं, सफाई करता है किसान, लेकिन उसके बीज फिर भी पड़े रहते हैं उसमें। और पूरी तरह जल ना पाने के कारण खेत में बोए गए पौधों के साथ पुनः उग आते हैं। घास फूस को जोड़कर उलट देने पर भी वे सघन रूप से ऊपर निकल आते हैं। इसी प्रकार गृहस्थ आश्रम एक कर्म क्षेत्र है। जब तक गृहस्थ आश्रम भोगने की कामना पूरी तरह भस्म नहीं कर दी जाती तब तक वह पुनः पुनः उदय होती जाती है। तो ये जो है ना भौतिक कामनाएं हैं वो दूर करता है, फिर से उगाती हैं। ये झाड़ झंखाड़ साफ कर दिया, काट दिया, है ना, वो सूख गया, पानी नहीं मिला तो सूख गया, लेकिन जब पानी पड़ता है उसके बीज पड़े रहते हैं, फिर से उगाता है। ऐसे बहुत ही कामना है। तो संसारों के जंगल देखिए कैसा है, इस प्रकार का है। फिर ये संसारों के जंगल में और क्या है, सुनिए। सांसारिक संपत्ति और संबंधियों में आसक्त जो बद्ध जीव है उसको कभी डांस और मच्छर सताते हैं। क्यों, जंगल है, ठीक है ना, ये जंगल है। डांस और मच्छर सताते हैं, कभी टिड्डी शिकारी पक्षी और चूहे सताते हैं, है ना। आप सोते हैं घर है आपका, ये घर नहीं है, जो चूहे हैं शिकारी पक्षी हैं टिड्डी हैं डांस मच्छर सताते हैं। क्यों, क्योंकि आप जंगल में हैं इसलिए, है ना। अच्छा, अब कभी कभी इस जंगल में क्या है, गंधर्व पूरी दिखाई देती है, गंधर्वों की कुछ माया दिखाई देती है और लगता है कि मैं तो बहुत अच्छे स्थान में आ गया हूँ जंगल में, ऐसा मालूम पड़ता है। तो बुद्ध जी कभी कभी इस गंधर्वपुरी में खाता पीता और स्त्री प्रसंग करता है, अधिक लगाव के कारण इंद्रिय सुखों के पीछे वह उसी प्रकार दौड़ता है जैसे मरुस्थल में मृग कृष्ण के पीछे हरण जंगल में जो होता है, हरण है वो जा रहा है इस ऐसी जगह पर जा रहा है जहां पानी है ही नहीं, जहां आग है, तपी हुई बालू है, बालू में आग जो ना इतनी आग है कि वो बालू में वो पानी दिखाई पड़ता है, वो हरण जो ना उधर जाता है ना। तो प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं भौतिक जगत मृग मरीचिका के समान है, मरुस्थल में पशु ये सोचते हैं कि उन्हें जल दिखाई पड़ रहा है किंतु वास्तव में वो जल नहीं होता है ना। विभिन्न शास्त्रों में ये बारंबार कहा गया है इस भौतिक संसार में कोई सुख नहीं है, फिर भी यदि हम सुख के बिना रहना स्वीकार कर लें तो भी हमें ऐसा नहीं करने दिया जाता। भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि ये भौतिक जगत न केवल दुखों से पूर्ण है वरन क्षणिक है अर्थात मृत्यु से पूर्ण है। यदि हम दुखों के बीच रहना भी चाहें तो प्रकृति हमें ऐसा नहीं करने देगी, क्या देगी, मृत्यु देगी है ना। और इस संसार के जंगल में और क्या है, पीले रंग का मल वो क्या है, सोना। कभी कभी जीवात्मा स्वर्ण के नाम से जाने वाले पीले मल की वांछा करके उसको पाने के लिए दौड़ता है, सोना। ये स्वर्ण भौतिक वैभव और ईर्ष्या का साधन है, इसके कारण जीवात्मा अवैध यौन संबंध और जुआ मांसाहार और नशे के सेवन में तत्पर होने में समर्थ होता है। रजोगुणी व्यक्ति सोने के रंग से उसी प्रकार आकृष्ट होते हैं जैसे वन में जाड़े से छिड़ता मनुष्य दलदल में दिखाई देने वाले प्रकाश को अग्नि समझ बैठता है ना। तो वहां पर आग नहीं है लेकिन वो सोचता है कि आग है, सर्दी में जो ना उसको आग दिखाई पड़ती है। इसके बाद अब और सुनिए संसार रूपी जंगल इसमें क्या है, कभी कभी बद्ध जीव रहने के लिए वास स्थान खोजने में लगा रहता है, अपना निवास स्थान कि कहाँ रहूं मैं, और अपने शरीर की रक्षा के लिए जल और धन प्राप्त करने में लगा रहता है। इस प्रकार अनेक प्रकार की आवश्यकताओं को जुटाने में लगे रहने के कारण वो सब कुछ भूल जाता है और इस जंगल में निरंतर इधर उधर भागता रहता है। तात्पर्य प्रभु लिखते हैं कि निर्धन व्यापारी जंगल में इसलिए जाता है उसे वहां सस्ती वस्तुएं मिल सकेंगी जिन्हें जाकर वह नगर में लाभ के साथ बेचेगा, किंतु वो अपनी देह और आत्मा को स्वस्थ रखने में इतना लीन हो जाता है कि उसे कृष्ण से अपने पूर्व संबंध का अब स्मरण नहीं रह पाता और मात्र शारीरिक सुख सुविधाओं की खोज करता है। जीवन के उद्देश्य को न जानते हुए भौतिकवादी निरंतर भौतिकता के पीछे दौड़ता है। प्रचुर आवश्यक वस्तुएं प्राप्त कर लेने पर भी जीवन के उद्देश्य को न समझने के कारण उसकी बनावटी आवश्यकताओं में वृद्धि होती जाती है और वो अधिकाधिक उलझता जाता है। वो ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देता है जिसमें उसे अधिकाधिक आराम की जरूरत रहती है। भौतिकवादी को प्रकृति की रहन सहन का मर्म ज्ञात नहीं होता। अब इस संसार जंगल में और क्या है, आप सुनिए। कभी कभी बद आत्मा धूल के बबुंडर से अंधे के समान स्त्री की सुंदरता को देखता है। जंगल में क्या है, धूल का बबुंडर होता है, तो धूल के बबुंडर में क्या होता है, उसकी आंखें बंद हो जाती है ना, तो वो स्त्री की सुंदरता है। इस प्रकार से अंधा होकर वह सुंदर स्त्री की गोद में जाकर बैठता है, उस समय उसके विवेक पर भोग इच्छा विजय पाती है और वह वासना से अंधा हो जाता है और काम जीवन के सब नियमों का उल्लंघन करने लगता है। उसे ज्ञान नहीं रह जाता कि उसके इस उल्लंघन को अनेक देवता देख रहे हैं। इस प्रकार आगे दंड को देखे बिना अर्धरात्रि में अवैध यौन सुख का आनंद लेता है। हाँ, और संसारों के जंगल में और क्या है, बद्धजीव कभी स्वतः सांसारिक विष्णुओं को मिथ्या स्वीकार कर लेता है तो कभी भौतिक सुखों को दुखपूर्ण मानता है, फिर भी अपनी उत्कट देहात्म बुद्धि के कारण उसकी स्मरण शक्ति फिर विनष्ट जाती है। वो देखता है, पछताता है कि इन सुखों में कितना दुख मिल रहा है, झूठे सुख में, इसे स्मृति खत्म हो जाती है और फिर से वो भौतिक सुखों के पीछे बार बार दौड़ता रहता है। जैसे मैं उस स्थल में मृत कृष्ण के लिए मृग दौड़ता है। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं और क्या है संसार रूपी जंगल में, कभी कभी बद्धजीव अपने शत्रुओं और राज कर्मचारियों की प्रताड़ना से अत्यंत दुखित रहता है, जो कटु वचन कहते रहते हैं। हाँ, उस समय उसके हृदय और कान अत्यंत व्यथित और विषादपूर्ण हो जाते हैं। तो ये जो ना प्रताड़ना उल्लू और झींगुरों की झुंकार है। जंगल में उल्लू और झींगुर अपनी आवाज से बहुत तकलीफ पहुंचाते हैं। तो जो राज कर्मचारी हैं ये उल्लू के समान हैं, जो बहुत खराब आवाज निकालते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं। जंगल है ना, राज कर्मचारी उल्लुओं के समान हैं और जो शत्रु हैं वो झींगुरों के समान हैं। झींगुर आवाज बहुत खराब निकालते हैं, लेकिन दिखाई नहीं पड़ते कहाँ से आवाज आ रही है, लेकिन बहुत डर पैदा करते हैं। तो शत्रु जो ना छिप छिप करके जो ना वो करते हैं, बदनामी करते हैं, तो वो झींगुरों की बुरी आवाज के समान है। तो संसारों के जंगल में बहुत से उल्लू और बहुत से झींगुर हैं। और क्या है, पूर्व जन्मों में अच्छे कर्मों के कारण बद्ध आत्मा को इस जीवन में भौतिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं, किंतु उनके समाप्त हो जाने पर वह जीवित ही मरा जैसा है। ऐसे धनी कंजूस मनुष्यों का सहारा लेता है, जो ना तो इस जीवन में न अगले जीवन में उसकी सहायता करते हैं। ये लोग ऐसे जो धनी कंजूस आदमी हैं, ये कैसे हैं, अपवित्र वृक्षों के समान हैं या विषैले कुएं के समान हैं। अपवित्र वृक्ष में है ना, आप जो ना अगर सहारा लोगे तो वो और तकलीफ देगा, उस पेड़ से बहुत तकलीफ प्राप्त होगी, और विषैला कुआं है उसका सहारा लोगे तो और ज्यादा तकलीफ प्राप्त होगी। इस भौतिक संसार में अपवित्र वृक्ष और विषैले कुएं मिलते हैं उसको, जीव को। और क्या है, कभी कभी इस संसार रूपी जंगल में अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए बद्धजीव पाखंडियों के सस्ते आशीर्वाद प्राप्त करता है। पाखंडी जो साधु के बीच में सस्ते आशीर्वाद पाता है कि महाराज जी आशीर्वाद दे दो, उनके संपर्क में उसकी मति भ्रष्ट जाती है, उथली नदी में कूदने के समान है। संसारों की जंगल में उसको जब बहुत गर्मी लगती है तो वो नदी में कूदता है मुझे उससे कुछ गर्मी दूर हो जाए, लेकिन वो नदी है उथली, उथली नदी में क्या होता है कि वो पत्थर ही पत्थर होते हैं, वो सिर केवल कूदता है और सिर उसका फट जाता है। तो ये जो साधु हैं उथली नदी के समान है, लगता है कि बढ़िया पानी है और मुझे मेरा कष्ट दूर हो जाएगा, मेरी गर्मी दूर हो जाएगी, और उसमें इतने बड़े बड़े पत्थर हैं कि आप उसकी उनका सहारा लेते हो और आपका सिर फोड़ने हो ना, झूठे आशीर्वाद देते हैं तो सिर फोड़ने के समान है।
इसका परिणाम ये होता है उसका सिर फूटता है। इस प्रकार वह गर्मी शांत करने में समर्थ नहीं होता है और दोनों ओर से हानि होती है, या तो गर्मी दूर हुई और सिर और फट गया उसका, है ना। ये पद वृद्ध बद जी तथाकथित साधुओं और स्वामियों की शरण में जाता है जो वेद विरुद्ध उपदेश देते हैं, सिर फाड़ देंगे आपका, किंतु इनसे उसे न तो वर्तमान में न भविष्य में ही लाभ प्राप्त होता है। तो प्रभुपाद के तात्पर्य लिखते हैं कि कुछ स्वार्थ लाभ के लिए इन कपटी सन्यासियों और योगियों से सस्ते आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बद्ध जी उनकी शरण में जाता है, किंतु उसे ना तो ईश्वर और ना ही भौतिक लाभ प्राप्त होता है। इस युग में ऐसे अनेक वाचक हैं जो जादू तिलिस्म दिखाकर ठगते हैं, अपने सेवकों को चमत्कृत करने के लिए सोना बना देते हैं और सेवकों ने ईश्वर मान लेते हैं, इस प्रकार से ठगा जाता है वो व्यक्ति। फिर अन्यों का शोषण करते रहने पर भी जब बद्ध जी इस भौतिक संसार में अपना निर्वाह नहीं कर पाता तो वह अपने पिता या पुत्र का शोषण करता है। देखा क्या होता है, पिता पुत्र का ही दुश्मन बन जाता है। तो अपने पिता या पुत्र का शोषण करता है, उनकी संपत्ति हर लेता है, भले ही वे त्रिल प्राय क्यों ना हो। यदि भाई पिता पुत्र या संबंधी की संपत्ति प्राप्त नहीं कर पाता तो ये उन्हें सभी प्रकार के कष्ट देने के लिए तैयार हो जाता है। संसार भी जंगल है, इसलिए इस संसार में गृहस्थाश्रम दावाग्नि के तुल्य है। इसमें तनिक भी सुख नहीं है और मनुष्य क्रमशः अधिकाधिक दुख में उलझता जाता है। पारिवारिक जीवन में चिरंतन सुख के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती। गृहस्थ में रहने पर भी बद्ध जी पश्चाताप की अग्नि से जलता रहता है। कभी वह अपने को अभागा मानता है तो कभी वह कहता है कि पूर्व जीवन में शुभ कर्म ना करने के कारण उसे कष्ट भोगना पड़ रहा है। अच्छा और क्या है इस संसार रूपी जंगल में, राज कर्मचारी की नरभक्षी राक्षस है। राजा के कर्मचारी जंगल में क्या मिलते हैं, राक्षस मिलते हैं जो आदमी को खाने वाले हैं। तो राज कर्मचारी क्या है, नरभक्षी राक्षस हैं, आदमी खाने वाले राक्षस हैं। तो कभी कभी बद्ध जी से रुष्ट होकर उसकी सारी संपत्ति संचित संपत्ति को ले लेते हैं, सब ले लेते हैं, सब छीन लेते हैं। इस प्रकार अपने जीवन भर की संचित पूंजी को खोकर बद्ध जी हतोत्साहित हो जाता है और ये उसके मरने के समान होता है। कभी कभी बद्ध जी ये कल्पना करने लगता है कि उसके पिता या बाबा अपने पुत्र या पौत्र के रूप में इस संसार में पुनः आते हैं। वो सोचता है हमारे पिताजी अब हमारे पुत्र बनेंगे, हमारे पिता के पिता हमारे पुत्र के पुत्र बनेंगे। वो सोचता है, इस प्रकार उन्हें स्वप्न का सा सुख अनुभव होता है और कभी कभी बद्ध जी को ऐसी मानसिक कल्पनाओं में बड़ा सुख मिलता है। मानसिक कल्पना आपने करते रहता है इस तरह से सुखी होता है, कल्पना काल्पनिक सुख प्राप्त करता है। इस घर में नाना प्रकार के यज्ञ और कर्मकांड करने होते हैं, ये सभी गृहस्थ के कर्तव्य हैं, बहुत ज्यादा विस्तृत हैं, इनको संपन्न करने में बड़ा कष्ट होता है। तो इसकी उपमा एक बड़ी पहाड़ी से दी जाती है जिसे सांसारिक कर्मों में संलग्न होने पर लांगना ही पड़ता है। जो व्यक्ति इन स्थानों पर विजय प्राप्त करना चाहता है उसे पहाड़ी में चढ़ते समय कांटों और कंकड़ों के चुभने से होने वाली पीड़ा का अनुभव करना होता है। बड़ा पहाड़ उसके सामने आता है, एक बहुत बड़ा पहाड़, कितना कर्मकांड है, मतलब विवाह है के जो उत्सव करने हैं, ये उत्सव करने हैं, वो उत्सव करने हैं, फिर दर्दी बनी, बहुत बड़ा पहाड़ उसके सामने आता है। उसको जो है ना उसमें बड़े कंकड़ और कांटे भोगने पड़ते हैं और उसमें चढ़नी पड़ता है पहाड़ में। कभी कभी शारीरिक भूख और प्यास से त्रस्त बद्ध जी इतना विचलित हो जाता है कि उसका धैर्य टूट जाता है, वह अपने ही प्रिय पुत्रों पुत्रियों और पत्नी पर रुष्ट हो जाता है। इस प्रकार निष्फल होने पर उसकी यात्रा और भी बढ़ जाती है। और निद्रा, निद्रा अजगर के समान है। अजगर क्या करता है, निकल जाता है, है ना। इस अजगर द्वारा डसे जाने के कारण अज्ञान के अंधकार में वो खो जाता है और सुदूर वन में मरे शरीर की भांति फेंक दिया जाता है। इस प्रकार बुद्ध जी को ये पता नहीं चल पाता कि जीवन में क्या हो रहा है, कि निद्रा अजगर के समान है। कभी कभी भौतिक जगत रूपी जंगल में बुद्ध जी सर्पों और अन्य जंतुओं जैसे ईर्ष्यालु शत्रुओं के द्वारा सताया जाता है। ये सांप और दूसरे जंतु हैं जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं। शत्रु के छल बस बुद्ध जी अपने पद से गिर जाता है। शत्रु छल करते हैं, कपट करते हैं और उसको पद से नीचे गिरा देते हैं। चिंता के कारण उसे नींद नहीं आती है, अधिक अधिक दुखी होता जाता है और अपना ज्ञान और चेतना खो बैठता है। उसकी दशा उस अंध पुरुष के समान हो जाती है, अज्ञान के अंधकूप में गिर गया हो। फिर विषयों से प्राप्त होने वाले क्षणिक सुख की ओर अब वो आकर्षित होता है। फलस्वरूप अवैध यौन संपर्क में रस होता है या पराये धन को चुराता है। ऐसी अवस्था में वह राजा के द्वारा बंदी बना लिया जाता है या फिर उस स्त्री का पति या उसका रक्षक उसे दंडित करता है। इस प्रकार किंचित सांसारिक तुष्टि के लिए वो नरक में जा पड़ता है और बलात्कार, अपहरण, चोरी इसी प्रकार के कार्यों के लिए कारागार में डाला जाता है। तो इस तरह से काफी इसमें जो है भवाटली का वर्णन है, संसारों के जंगल का वर्णन है। तो चूंकि भगवान इस अध्याय में इस संसार की वृक्ष से तुलना कर रहे हैं तो हमने यही चर्चा की है कि ये जो वृक्ष है मतलब एक जंगल जिसके कई फ्लोर हैं, ठीक है ना। जंगल का तो एक ही फ्लोर होता है, लेकिन ये भगवान जब वृक्ष से तुलना करें बहुत बड़ा वृक्ष है, इसका मतलब ये है कि जंगल कई फ्लोर में है, ठीक है ना। और वो जो है ऊपर के लोग हैं वो भी जंगल हैं, नीचे के लोग भी जंगल हैं, है? और इसलिए भगवान इस श्लोक में, आज के श्लोक में कह रहे हैं कि शाखाएं फैली हैं, ऊपर भी हैं, नीचे भी हैं, चारों तरफ शाखाएं फैली हैं इस जंगल में, है ना। तो बहुत सुंदर वर्णन है ना। हम लोग जो रोज बोलते हैं संसार दावन लीढ़ लोका, है ना, तो उसी की व्याख्या भगवान इन श्लोकों में कर रहे हैं। अब किसी का कोई प्रश्न है या कोई समीक्षा? हाँ, हमने शुरू में इसका अध्ययन किया था और प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये असत्य वृक्ष है, मतलब बट वृक्ष है, ये बरगद का पेड़ है। तो इसमें सबसे ऊपर की जो जड़ है तो वो ब्रह्मा जी हैं, है ना। तो जड़ से ही फिर वो तना निकलता है और फिर उससे सब शाखाएं निकलती हैं। तो ब्रह्मा जी ही जो है मतलब इस बट वृक्ष की, संसार वृक्ष की जड़ है। फिर उनसे जो ना बहुत से प्रजापतियों का जन्म होता है, तो वो कई शाखाएं और शाखाओं से फिर और शाखाएं निकलती हैं, और शाखाएं निकलती हैं। तो असंख्य जो ना ये जो ना विस्तार होता है इस वृक्ष का। तो लेकिन वो जड़ जो ना ब्रह्मा जी हैं, जिससे कि वो ये वृक्ष फैलता है, संसार में वृक्ष फैलता है ना। और फिर इसमें फिर भगवान कहते हैं अधस्तोर्धम प्रंसितांसन शाखा, ऊपर नीचे ये शाखाएं चलती हैं। तो फिर हमने चर्चा की ये सप्तगुण ये जो शाखाएं हैं वो ऊपर की ओर जाती हैं, रजोगुणी शाखाएं आठों दिशाओं में फैली हैं, है ना, और तमोगुण की शाखाएं नीचे की दिशा में जा रही हैं। इस प्रकार से दसों दिशाओं में शाखाएं फैली हुई है। गुण प्रवृद्धा, तीन गुणों से ये बढ़ रही है शाखाएं। तो हमने चर्चा की थी कि इसमें तीन प्रकार का जल होता है जो वृक्ष की जड़ से जो है वृक्ष में जाता है। तो ऐसा वृक्ष देखने में नहीं आता है संसार में जो कि अलग अलग प्रकार का जल अलग अलग भागों में जाए, है ना। इस संसार में ही देखा जाए भाई, कोई भी जल हो आप जल में डालते हो तो फिर पूरे वृक्ष में जाता है, लेकिन नहीं, इसमें सत्वगुण का जो जल है ये ऊपर की शाखाओं को फैलाता है, रजोगुणी जो जल है वो आठ दिशाओं में जो शाखाएं फैली हैं उनको विस्तृत करता है, और तमोगुणी का जो जल है वो नीचे की शाखाओं को विस्तृत करता है। और हमें ये भी समझाया कि अलग अलग युगों में जो है ना अलग अलग गुणों का प्रभाव होता है, सत्युग में सत्वगुण बढ़ता है तो ब्राह्मणों की प्रधानता होती है, त्रेता में रजोगुण बढ़ता है क्षत्रियों की प्रधानता होती है, और द्वापर में रजोगुण तमोगुण का मिश्रण होता है तो वैश्यों की प्रधानता होती है, और कलयुग में तमोगुण बढ़ता है तो शूद्रों की प्रधानता होती है। गोल प्रवृद्धा विषय प्रवाला, विषय प्रवाला कोपले है, इसमें जो है इस वृक्ष में जो है जो नई नई कोपले होती है आगे चल करके वो शाखाएं बन जाती है, या शुरू शुरू में जो कोपले होती है तो ये विषय है, विषय भोग जो कि देखने में बड़े आकर्षक लगते हैं, है ना, विषय प्रवाला। फिर अधस्त मूल अनुसंधान, फिर नीचे की ओर सहायक जने ये अनुसंधान में लटक रही है, नीचे की तरफ जाने लटकती है ना, जैसे बरगद का पेड़ होता है तो मुख्य जड़ होती है और फिर वो पेड़ ऊपर जाता है तो उसकी शाखाएं जो जैसे फैलती हैं तो शाखाओं से और जड़े गिरती है नीचे और फिर जमीन के अंदर वो घुस जाती है और पेड़ बड़ा टूट जाता है। सहायक गणे वो जो है शाखाओं से नीचे गिरती है और जमीन में घुस जाती है, तो वो कर्मानुबंधिनी, यहाँ पर भगवान कर्म से बांधने वाली वो जड़े कर्मानुबंधी मनुष्य लोग, मनुष्य लोग में कर्म से बांधने वाली है, राग द्वेष धर्म अधर्म ये जो ना कर्म से बांधने वाली शाखाएं। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री राधा पार्षदी ललिता विशाखा की, श्री त्रिकोणताय भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, हरे कृष्णा।